जय माँ। पहले जो अनिल भैया ने बात की है उससे जुड़ी हुई एक बात हो जाए कि वास्तव में ये भारत में बहुत पुरानी हमारी सभ्यता का हिस्सा है। जन्मदिन का विशेष महत्व हम उसको भूल गए हैं पाश्चात्य सभ्यता के बहुत अधिक उसकी जो छाया पड़ी है, जिसमें हम जन्मदिन को केवल आज जो होता है कि भाई पार्टी ड्रिंक बी मैरी, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें, वरना क्यों ऐसा है होता भारतवर्ष में कि हम वर्ष का जो जन्म होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संक्रांति के दिन या जिस भी दिन हो अलग अलग तरह से। तो जन्म दिवस की जो परंपरा है हमारी, परंपरा क्या, सत्य, सत्य को परंपरा बनना वो एक अलग बात है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से है। हाँ, व्यक्तिगत जन्म दिवस जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इफेक्ट है कि ये दिन, जैसे न्यू ईयर डे हम लोग ये मानने लगे कि भाई एंजॉय करो, रात 12 बजे तक पार्टी करो, शराब पियो, लेकिन अगर भारतवर्ष में जाएं तो किस तरह से हम लोग संक्रांति मनाते थे जो नववर्ष ही माना गया है, मतलब साल का नववर्ष। उसी तरह से जब श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, राधा माता का जन्म उत्सव मनाया जाता है, क्यों हम मनाते हैं उसको, ऐसी क्या विशेषता है। यहाँ तक कि दोनों दिन हम, मेरे तो घर में मनाया जाता था जन्माष्टमी और श्री राम रामनवमी, क्यों हम मनाते हैं, क्योंकि ये केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है कि वो बस शरीर ने जन्म लिया। अब जब हम लोग श्री राम जी की बात करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये केवल एक भौतिक शरीर का जन्म नहीं है, उस शरीर के साथ में एक संभावना जन्मी है, एक अभिप्सा जन्मी है, और ना जाने किस किस तरह की चीजें जन्मी हैं जो भविष्य में आकर खुलेंगी। तो कभी भी भारतवर्ष में, और ये हम सब जानते हैं, कई घरों में पहले भी होता रहा होगा कि जन्मदिवस को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता था। यहाँ तक कि हम लोग इवन क्रिसमस को मनाते थे एज ए बड़ा दिन, बड़ा दिन का होता था, हालांकि वो उसका क्राइस्ट के जन्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भारतवर्ष में तो ये परंपरा में बिल्कुल अच्छी से है, जिसको हम भूल गए, और सीमा हमको उसका स्मरण करा रही है कि जन्मदिन का विशेष महत्व क्या है। तो अब इस महत्व के थोड़े पाशर में जाएं तो हमको ये दिखाई देता है कि काल की जो गति है उसमें दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो है कि वो समय आगे बढ़ता जाता है, इससे हम सब परिचित हैं, लेकिन एक और गति है जो साथ साथ चलती है, जिसको साइक्लिक मूवमेंट ऑफ टाइम कहते हैं। ये साइक्लिक मूवमेंट जो काल का है, ये जीवन में चलता रहता है, और इसी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, कई बार लोग कहते हैं शनि की साढ़े साती या राहु काल चल रहा है, ये क्यों कहते हैं, ये एक कालखंड में ऐसे अवसर आते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, और अगर यू हैव टू वेट थ्रू, वो अलग बात है कि आप पूजा पाठ करिए तो चलो पंडितों का भला हो जाता है, लेकिन वो आप 2.5 साल पूजा करें ना करें, आप एंड्योर करें, वो काल गति वो अपने आप चली जाएगी, वो वेव्स हैं टाइम के, और वास्तव में उसका एक महत्व है, वो एक अलग बात है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल प्रमाइसिस में। लेकिन मुख्य चीज ये है कि जीवन में एक है स्ट्रेट समय जा रहा है, सीधा अपने काल गति से जाता जा रहा है, आगे को बढ़ रहा है। दूसरा है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी ऐसी काल की गतियां हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सृष्टि का प्रारंभ ही नाद से होता है, प्रारंभ में भी लाश से होता है, अंत में भी तांडव होता है, इट इज ए डांस। तो वो सारा एक रिद्म है जो हमारे शरीर की कोशिका कोशिका में भी है, इवन जीवन और मृत्यु एक रिद्म है, और इसको आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, एक औसत आयु एक व्यक्ति की पहले 85 मानी जाती थी, अब 95 एवरेज एज है, आपकी जीन्स की क्लॉक है जो इस तरह से काम करती हैं, आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो क्लॉकवाइज करेगी। उसी तरह अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवन में कुछ कालखंड होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, हमको लग रहा है ये कारण है वो कारण है, नाना प्रकार की पूजा करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस होता है, और अगर हम उस पर्पस को ध्यान से देखें तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो वास्तव में वो काल की जो कठिन घड़ियां हैं हमारे अंदर की कुछ कठिनाइयों को सरफेस पर लाती हैं, उनके परिणाम आते हैं, और उनको देख करके हम उनको चाहें तो पूरी तरह उनको हटा सकते हैं, त्याग सकते हैं उस आंतरिक कठिनाई को, और आगे बढ़ सकते हैं, और यदि हम नहीं करते हैं तो भी वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है, लेकिन वो फिर आएंगी। तो काल की ये जो दूसरा मूवमेंट है जिसको हम साइक्लिक मूवमेंट ऑफ टाइम कहें, वही हमारे यहाँ चार युगों की बात है कि भाई चार युग आते हैं, फिर एक व्हील फिर से चलता है, एक प्रलय होती है उसके बाद चलता है, उसी प्रकार से जीवन में जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर रीबर्थ होता है, तो ये भी एक साइकिल है, ऋतुएं होती हैं, ये साइकिल है, तो ये साइक्लिक नेचर ऑफ समय काल, उससे ये कनेक्टेड है। तो अब हम लोग आ जाएं उसमें, जूम इन करें अगर व्यक्ति के जन्म, तो अब श्री कृष्ण का जन्म, श्री राम जी का जन्म, ये तो उत्सव है, पृथ्वी का जन्म, अलग अलग उसका जन्म, तो क्या मनुष्य के व्यक्तिगत मनुष्य के जन्म का भी महत्व है? तो यहाँ माँ उस सत्य को बाहर उभारती हैं। अब ये कहा पूछा जा सकता है, चूंकि हम लोग इसको बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति के, कि फिर ऐसा क्यों है कि भारतवर्ष में इंडिविजुअल लाइफ के बर्थ पर इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया? ये जस्ट आई टच, ऐसा नहीं है, थी हमारे यहाँ परंपरा में, मैं अब मेरे घर में तो थी, पर फिर भी अगर ये बात करें कि इतना महत्व क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पहले अगर हम देखेंगे 100 वर्ष पूर्व या 150 वर्ष पूर्व, एक सोशल समाज और सभ्यता के जन्म की बात होती है, लेकिन व्यक्तिगत, क्योंकि इंडिविजुअलाइज होना जिसको कहते हैं साइकिक बीइंग और चैत्य सत्ता का, इसका इतना जोर इस पर नहीं है। परंतु जैसे जैसे चैत्य सत्ता बनती जाती है, जो इंडिविजुअल सोल जो एक भ्रूण की अवस्था में है, वो जैसे जैसे फॉर्म होती है वैसे वैसे वो जागृत होती है, और वैसे वैसे उसका महत्व तो उतना ही बढ़ता जाता है, और इसलिए खासकर माँ इस युग में आगत युग के लिए जन्मदिन का एक विशेष महत्व तो बता रही हैं। किस लिए? क्योंकि वह एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारी सोल जिस प्रयोजन से अंदर आई थी धरती के अंदर, वो फिर से एक बार उसको जागृत होता है, स्मरण होती है उसको। और अगर हम एक जीवन काल में भी देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है साइकिल ऑफ टाइम में, कि एक जीवन में भी हमारे अलग अलग जन्म होते हैं। और इसी चीज को अगर हम वैदिक काल में जाएं तो उन्होंने तो इसको माउंटेन्स के रूप में बताया कि आप चढ़ते हो, उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तो एक तो फिजिकल बर्थ है, फिजिकल बर्थ में हम भौतिक वातावरण में जन्म लेते हैं, उसके बाद एक जो जन्म होता है वो होता है साइकोलॉजिकल बर्थ। अब आप देखें कि जैसे भौतिक जन्म के पहले लेबर पेन्स होते हैं, प्रसव पीड़ा होती है, क्यों? क्योंकि माँ को अपने ही अंदर उन्होंने जो बनाया है वो बाहर आएगा, और एक चैलेंज ऑफ लाइफ, क्या चैलेंज है बच्चे के जीवन में, एकदम छोटे बच्चे के जीवन में भौतिक जीवन का चैलेंज है उसके लिए, वही चैलेंज बहुत है। फिर एडोलेसेंस में, जिससे बड़े लोग बड़े परेशान होते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वह भी प्रसव पीड़ा है। प्रसव पीड़ा से अगर वो अच्छे से बाहर निकलेगा तो उसका एक्चुअल साइकोलॉजिकल बर्थ होगा। अब इस चीज को, अब इंडियंस बहुत इस मामले में बहुत ही अकल्ट दृष्टि थी और स्पिरिचुअल दृष्टि थी, तो ये प्रसव पीड़ा आमतौर पर सेकेंड बर्थ की, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल बर्थ कहें अगर आज के समय में, तो गुरुकुल में होती थी वहाँ के चैलेंजेस के थ्रू। अब वो जब प्रसव पीड़ा होके एडल्टहुड फॉर्म होता है, ये दूसरा जन्म है, यानी आप, आपकी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच होती है, आप हमेशा ये नहीं कि मेरे माँ बाप जो सोचते हैं वही मैं करूँ, ये नहीं है, और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम आगे की ओर नहीं जा रहे हैं, हम वापस जुड़े हुए हैं उसी उसमें। इवन सनातन धर्म में इसीलिए अवतार आते हैं नए रूप में, काल की गति बदलती है, सब कुछ नए रूप में प्रकट होता है। तो जो सेकंड बर्थ है, मैं सेकंड बर्थ टेक्निकली लोग स्पिरिचुअल बर्थ को कहते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल बर्थ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भौतिक शरीर का जन्म हुआ, फिर सेकंड बर्थ है जब आप साइकोलॉजिकली मेच्योर होते हैं। कई जगहों पर इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, जगह जगह पर एडल्टहुड को। फिर अब इस एडल्टहुड की जो सेलिब्रेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सेकंड बर्थ की बात कर रहा हूँ, माओरी ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स में है, अभी हमारे यहाँ वो बच्ची जब मैच्योर हो गई, पीरियड शुरू होते हैं, तो कई लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लेकिन जो ये सेकंड सेलिब्रेशन है माओरी ट्राइब में, बड़ी अच्छी परंपरा है, इंटरेस्टिंग। तो ये क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड की ट्राइब है, कि वो कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, जब तुम कहते हैं ना कि बड़े, सच में बड़े हो गए हो, तो बच्चे को वो जंगल में, बच्चा क्या बड़ा हो रहा है, आप जंगल में उसको छोड़ते हो, और एक भाला होता है हाथ में और आंखों में पट्टी होती है, अब वो जंगल है, वहाँ शेर भी है, ये भी है, और आपको वो रात गुजारनी है, और रात गुजार के अगर आप ठीक ठाक, तो मतलब यू हैव डेवलप्ड, इट्स ए न्यू बर्थ, अब आप केवल अपने माता पिता के अधीन नहीं हो, उनका पल्लू बांध के नहीं चल रहे हो, आप अब सक्षम हो जीवन को फेस करने के लिए। तो ये तो दो जन्म हो गए, और फिर एक होता है जिसको स्पिरिचुअल बर्थ की बात कही जाती है, आध्यात्मिक जीवन में आपका जन्म, जहां पर आपके अंदर अभिप्सा जागती है, और ये दोनों चीजें पीछे छूट जाती हैं या इंटीग्रेट करनी होती हैं, और एक नई दिशा जो आपकी अभिप्सा की दिशा है, और ये एक थर्ड लेवल पर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करने की चेष्टा की. फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल बर्थ को इंटीग्रेट किया गया भौतिक जन्म के साथ उस परंपरा से जिसमें ये मान्यता होती थी कि जो आपका गोत्र, गोत्र ये आप सब भूल गए, गोत्र क्या होता था, एक ऋषि से कनेक्टेड होता था. अब उस ऋषि को अगर देखेंगे तो वो ऋषि क्या होते थे, उनके अंदर एक ओरिजिनल इम्पल्शन है सृष्टि के अंदर काम करने का. आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा हास्यास्पद भी है. तो मैंने कहा मेरा गोत्र क्या है, तो पता चला मेरा गोत्र भरद्वाज है. अब भरद्वाज ऋषि के नाम से दो चीज़ें हैं, एक उन्होंने हीलिंग के ऊपर आयुर्वेद का पूरे वो सबको बुला करके उन्होंने एक हीलर थे, दूसरा उन्होंने विमान शास्त्र भी लिखा. तो मुझे लगा अच्छा कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हूँ, अभी भी एयरफोर्स में और मेडिसिन से जुड़ा हूँ. तो कहने का अर्थ ये कि वो एक थर्ड लेवल का, इसको हम लोग हमेशा मानते थे कि एक हायर बर्थ है, और वो हायर बर्थ है हमारा स्पिरिचुअल बर्थ. स्पिरिचुअल बर्थ क्या है, हम हमारी एस्पिरेशन. एक है जो बच्चा जब फिजिकली जन्म लेता है तो माता पिता उसके अंदर अपना एम्बिशन या एस्पिरेशन या जो भी कहें डाल देते हैं, लेकिन बच्चे को इससे बाहर निकल करके, हो सकता है कि वो अलाइंड हो, अगर वो ऋषि हैं या माता पिता बहुत डेवलप्ड हैं जैसे माता जीजाबाई, तो वो एक अलग बात है. किंतु आमतौर पर ये एक स्टेज आती है जब हमको इससे बाहर निकल करके अब हमारी एक स्पिरिचुअल बर्थ, हम किस लिए पृथ्वी पर आए हैं, हमारा विशेष मकसद क्या है. माँ यहाँ तक कहती हैं कि जिस दिन व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है, वो उसका अर्थ यही है कि उसका साइकिक बीइंग अवेक है. तो कहती हैं कि ये पता कैसे चलता है ये दो तरह के व्यक्तियों में, एक जो जिसका स्पिरिचुअल बर्थ हो चुका है, दूसरा जिसका नहीं हुआ है. अब हमारे यहाँ इसको कहते थे द्विज, द्विज इज ट्वाइस बॉर्न, इसीलिए मैंने कहा कि वो सेकेंड बर्थ जो मैं बीच में कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड बर्थ भी अज्ञान में है जन्म, ट्वाइस बॉर्न द्विज. और ये ट्वाइस बॉर्न जब आप कोई गुरु के पास जाते थे, गुरु आपको इनिशिएट करता था, तो तब ट्वाइस बॉर्न होता था, तो वो द्विज हो जाता था. अज जो उसका रूट है बर्थ, उससे आता था द्व और अज, ट्वाइस बॉर्न. तो अब भारतवर्ष में इसकी परंपरा ये होती थी कि भाई अब ये सेकंड बर्थ इसका हो गया है तो आप इसको जनेऊ पहना दो. ये जनेऊ पहनाने का क्या अर्थ होता था कि भाई ये देखो इस व्यक्ति का अब ये एक नई यात्रा पर है, इससे आप ज़्यादा उलझो मत, उलझोगे तो समस्या होगी, क्योंकि इसकी जो यात्रा है अगर आपकी यात्रा के साथ मैच नहीं खाती है, अगर आप भी ट्वाइस बॉर्न नहीं हो तो ये समस्या क्रिएट करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आप इसको एक उस जीवन में खींचोगे जो उसका जीवन अब नहीं है, वो उस जीवन के प्रति मर चुका है. इसके बहुत तरीके अपनाते थे लोग, संन्यास लेते थे कि अब मैं न मेरे माता हैं ना पिता हैं. बाय द वे आश्रम में भी एक बार एक ये बात हुई थी, किसी लेडी की डेथ हुई तो उसके भाई आए थे, उन्होंने उसको पैसे वैसे दिए थे. ये एक्चुअल केस हुआ है, बहन थी तो पैसे दिए थे उन्होंने, अब उनके अकाउंट में पैसे थे, इनकी मृत्यु हो गई. तो जब मृत्यु हो गई तो वो क्लेम करने के लिए आए, तो जब क्लेम करने के लिए आए मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ था क्योंकि वो आश्रम से कनेक्टेड थी. तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया, मैंने कहा देखिए आश्रम में आने से आप सन्यासी नहीं हैं, बट टेक्निकली यू आर रिगार्डेड एज ए सन्यासी. तो ना आप किसी चीज को क्लेम कर सकते हैं ना उसकी किसी चीज पर आपका क्लेम होता है, क्योंकि उसका कुछ नहीं है, वो तो फिर बिलोंग करता है वहीं पर. और ये आश्रम में ये किया जाता था, जब आश्रम में कोई साधक आता था तो श्री अरविंद माताजी दो प्रकार से वो ज्वाइन करता था. एक था जहाँ वो भौतिक रूप से उस समय सारी चीज़ें माँ श्री अरविंद को दे देता था, जो भी उसकी फिजिकल एक्युमुलेट किया है, और वो फिर पूरी तरह उनसे सब कुछ रिसीव करेगा. इसको नलिदा ने बड़े सुंदर ढंग से एक आयरन चेन आर्टिकल में लिखा है, गोल्डन चेन आर्टिकल में. और दूसरे प्रकार के थे, क्योंकि श्री अरविंद तो बहुत कृपा में, वो कहते थे ठीक है तुम रहो अपने हिसाब से रहो, आश्रम में भी रहते थे बाहर भी रहते थे, लेकिन इनवर्डली तुम्हारा नया जन्म हो गया, यानी आपके अंदर इनिशिएट हो गया, अभिप्सा आ गई है और आप उस लाइफ को लीड कर रहे हैं. तो अब एक जीवन ऐसा है जहां पर हमारी जब नया जन्म होता है जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक अभिप्सा को याद करते हैं. जिस दिन वो अभिप्सा जन्म ले चुकी तब फिर आपका हर दिन बर्थडे है. एक बार शेरविन से किसी ने पूछा था कि हालांकि 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है कि हर दिन आपका जन्मदिन है, कहते हैं बिल्कुल सही सत्य है, लेकिन ये जानने के लिए समय, मतलब वो इनर डेवलपमेंट चाहिए। उसी तरह एक जन्मदिन है जो लोग यहां पर ये परंपरा थी कि वो एक जन्मदिन तो हमारा फिजिकल बर्थ है, एक जन्मदिन वो होता था जिस दिन हम लोग यहां आते थे। तो एक उस समय के साधकों का आप कईयों से पूछेंगे तो वो ये था कि भाई हमारे दो जन्मदिन नहीं, फिर वो वही दिन कहते थे जिस दिन उन्होंने आके या तो श्रीमान श्री अरविंद का दर्शन किया या यहां पर उनकी लैंडिंग हुई। कल मैं शेयर कर रहा था, मेरा तो बड़ा अजीब हुआ कि 19 जून को मेरा जन्मदिन भी है और 19 जून को मैं श्री अरविंद के रूम में गया बिना जाने, 18 जून की शाम को यहां मेरी लैंडिंग हुई। तो वो तो भगवान का कोई दैवी संकेत था, लेकिन बेसिकली वो दिन जिस दिन हमारा फिजिकल बर्थ होता है उस दिन भी कहीं ना कहीं वो जो बैकग्राउंड में अभिप्सा है जो जन्म लेना चाह रही है, और माँ तो यहाँ तक कहती हैं कि उस दिन जो हमारी चैत्य सत्ता है वो बाहर निकल करके भगवान से मिलती है। ठीक वैसे जैसे रोज रात को हम सोते हैं, कई बार देखेंगे कि बड़ी परेशानियां हैं, पीपल स्लीप ओवर इट, मॉर्निंग दे आर डिफरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चैत्य सत्ता मिलती है भगवान के साथ और वो उसको फिर से याद दिलाते हैं कि देख तू किस लिए आया है। और ये एक बड़ी बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं तो इस चीज़ को सावित्री की एक पूरी पैसेज है जिसमें सावित्री का न्यू बर्थ कैसे होता है, सावित्री बैठी हैं सत्यवान के साथ, कह रही है मेरे जीवन में ये भाग्य ने मेरे जीवन में लिखा है, मैं क्या करूं। एक उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं भी सत्यवान के साथ चिता में चली जाऊं, ये विचार आता है उनके मन में। उस समय वो बैठी हुई जब हैं तो उनके ही अंदर में एक भाव उठता है, ये एक्चुअली न्यू बर्थ की, और मैं तो मानता हूँ कि जन्मदिन में ये पढ़ना चाहिए। तो वो जब बैठी हुई हैं तो उनको एक वाणी सुनाई देती है, आकाशवाणी। वाणी कहती है, ए वॉइस रिप्लाइड, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, स्मरण करो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अब अगर वो दिन हम मुख्य रूप से अब फिजिकल बर्थडे से कैसे कोलेट करते हैं इस तरह की, उस दिन वास्तव में हमारा जन्म ही उसी लिए हुआ है, चैत्य की प्रेरणा है पीछे। डेवलप नहीं होती है तो हम पूरा माँ बाप के एम्बिशन और समाज संसार इसमें खो जाते हैं, और डेवलप्ड होती है तो उनके जीवन में निश्चित रूप से ये एक ब्रेक होता है। और ब्रेक कैसे होता है, कहीं ना कहीं कि या तो वो बाहर कहीं चले जाएंगे या उस जीवन से बाहर निकल के अल्टीमेटली वो अपने स्पिरिचुअल पथ से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये मूल चीज़ है। बात ये नहीं कि बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, वो एक पार्ट है। सेलिब्रेट इस तरह किया जाए कि हम ध्यान करें, स्मरण करें कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। और वो बहुत सुंदर दिन है क्योंकि उस समय चैत्य भाव बहुत प्रबल होता है। लेकिन मुख्य चीज़ है कि बर्थडे कौन सा है। हमारे यहाँ एक होती तिथि का जन्मदिन और एक इसका, तो मैं ऐसे कहता हूँ बर्थडे कौन सा है। एक है जो फिजिकल बर्थ है, यहाँ पर वही मनाते हैं हम लोग कि भाई एक स्टैंडर्डाइज्ड है, लेकिन आश्रम में ये परंपरा थी कि कई लोग जब वो दोबारा आते थे या जब वो पहली बार आते थे, जब माँ उनको देखती थी उसको जन्मदिन मनाते थे। और इसको भी माँ ने सैंक्शन दिया हुआ है, और बहुत है तो दो दो दिन मनाइए जिनको अवसर है। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि वो एक ऐसा दिन है जब एक प्रकार से हम चाहें तो हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि वो एक नया जन्म, एक नई संभावना, और जिन लोगों ने इसको कॉन्शियसली अनुभव किया है, मैंने इसको देखा है कि बर्थडे के कुछ समय पहले आपके अंदर कई सारी चीज़ें प्रारंभ होती हैं। एक होती है जो एक कैथारसिस शुरू होती है, एक होती है कोई नई प्रेरणा आ रही है, और अगर आप प्रतीक्षा करें तो वो जन्मदिन फिर उसके बाद एक नया जीवन एक प्रकार से प्रारंभ होता है। तो ये एक अवसर है जिसका हम लोग लाभ उठा सकते हैं। ये उसका बैकग्राउंड है। माँ, मधुर माँ, पेज नंबर 4, एक स्मारक अवसर होने के अलावा हमारे जन्मदिन का सचमुच क्या अर्थ होता है, व्यक्ति इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता है। माँ कहती हैं, वैश्य शक्तियों के लय के कारण, ये देखिए डांस है टाइम का, और केवल टाइम का नहीं, टाइम तो सबको नचा रहा है, तो वो सारी जो वैश्य शक्तियां हैं वो काल के अधीन होकर नाच रही हैं। वैश्य शक्तियों के लय के कारण ये माना जाता है कि हर साल व्यक्ति के अंदर अपने जन्मदिन पर विशेष ग्रहणशीलता होती है, वो रिद्म होती है। जब वो रिद्म, जैसे भूख लगती है, भूख आपका वो समय है जो आपने निर्धारित किया है, तो जैसे ही वो टाइम आएगा ऑटोमेटिकली आपको भूख लगेगी। सोने का टाइम है, आपने अगर उसको बिगाड़ा नहीं है, एक टाइम है, तो सोने के समय आपको निद्रा आएगी। उसी प्रकार से ठीक वैसे ही, क्योंकि काल की एक गति के रूप से वो काम करता है, क्योंकि काल वास्तव में टाइम एक म्यूजिशियन है, तो वो वाद्य यंत्र बजाता है, और जैसे ही वो दिन आता है जब हमारा फिजिकल जन्म हुआ है, तो वो वापस वो ट्यून बजाने लगता है। एक अभी हाल में फिल्म आई है, ओडिसी, आई कैन नॉट हेल्प मेंशन लिटिल बिट, उसमें एक यात्रा के समय एक घटना है जिसको कहा जाता है सॉन्ग ऑफ द साइरेंस। सो वो गाना, जब वो कहा गया है कि इसको सुन के तुम रह नहीं सकते, तुम चले जाओगे, मतलब क्या होगा तुम्हारा मालूम नहीं, मृत्यु को ही प्राप्त होगे या जो भी होगा, तो इसलिए कहा गया था कि इसको सुनना नहीं है। और बाकी सबके कानों में ओडिसियस, वो ग्रीक हीरो हैं, बड़े अद्भुत लीजेंडरी हैं, तो वो कानों में मोम डाल लेना, लेकिन मैं सुनूंगा, मुझे बांध देना। अब उस गाने में क्या होता है कि वो सब कुछ उनको अपने जीवन की एक झांकी दिखाई देती है, वे सारी चीज़ें जो आधी अधूरी हैं, वे सारी चीज़ें जो उनको करनी है, वे कृत्य जो उनके उनकी डीपर सेंस में उचित नहीं थे, वे चीज़ें जो अभी अधूरी हैं, ये सारी चीज़ें वास्तव में वो साइरन सॉन्ग, इसको कहा भी गया है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपके मृत्यु के समय आप अंत में क्या सुनते हो। तो एक प्रकार से जो जन्मदिन है, इसकी एक प्रकार की छोटी सी पुनरावृत्ति है, एक फ्लैशबैक के रूप में आपका पास्ट गुजरता है, और फिर उसी के साथ साथ एक नई चीज जो जागृत होने वाली है वो भी जन्म लेती है, और अगर हम उसको फोकस करें तो बहुत सुंदर अवसर है छलांग लेने का। तो माँ यहां विश्व शक्तियों की बात कर रही है। इस कारण वह इस ग्रहणशीलता का इस भांति लाभ उठा सकता है कि अपने संपूर्ण विकास के लिए वो इस दिन अच्छे संकल्प ले, नई प्रगति को और आगे कदम उठा ले। ये एक कदम आगे बढ़ने का, ये जो हम लोगों का भौतिक जन्मदिन है। अगले पृष्ठ पे माँ कह रही हैं, हाँ सचमुच ये मनुष्य के जीवन का एक विशेष दिन होता है। यह वर्ष के उन दिनों में से एक है जब परम पुरुष हमारे अंदर उतरते हैं, हाँ भगवान आते हैं जगाने, तो थोड़ा समय तो देना चाहिए शांति के साथ उनके साथ बैठने का। यह उन दिनों में से एक है जब हमारी अंतरात्मा शाश्वत के साथ संपर्क में आती है, और अगर हम जरा भी सचेतन रहें तो हम अपने अंदर उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम जरा सा प्रयास करें तो हम बिजली की कौंध की तरह एक क्षण में कई जीवनों का काम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए यह नियमित होती है, इसीलिए जन्मदिन का इतना अधिक महत्व देती हूँ, क्योंकि इस एक दिन से हम जो प्रगति कर सकते हैं वो सचमुच अतुलनीय है। और ये माँ यहाँ पे करती थी, जन्मदिन एक ऐसा दिन था जिस दिन माँ से आप कितनी भी बार मिल सकते थे, आप सुबह मिलो, हाँ माँ टाइम देती थी, यानी कि आप कभी भी चले गए पर दो दो बार तीन तीन बार लोग मिले हैं माँ से, और उन्होंने जिस तरह से वो अद्भुत जो अनुभव करते थे, कई लोगों ने इसको वर्णन भी किया इसका। मेरे बालक, ये बहुत बहुत विशेष दिन है, क्योंकि ये निर्णय का दिन है, ऐसा दिन है जब तुम परम चेतना के साथ एक हो सकते हो। उस दिन भगवान हमें उच्चतम संभव क्षेत्र तक उठाते हैं ताकि हमारी आत्मा, जो उस शाश्वत ज्वाला का अंश है, अपने सत्य के साथ मिलकर तादात्म हो सके। तो ये टाइम के रिद्म में ही भगवान ने काल की गति में ऐसे मोमेंट्स छोड़े हैं। हम ऐसे कहें ऐसे मोमेंट्स हैं जब एक द्वार खुलता है और भगवान खड़े होते हैं। अब सोचिए, अब जिस समय भगवान खड़े हों, द्वार खुला हुआ हो, भगवान खड़े हों या नॉक कर रहे हैं, उस दिन अगर हम पार्टी कर रहे हों और कैसी पार्टी, शराब चल रही है, ये ना जाने क्या क्या चल रहा है, वो भगवान तो थोड़ी देर अब अपने बिजी शेड्यूल में से आते हैं, ये उनकी महिमा है, करुणा है। तो ये आवश्यक है कि उस दिन का हम महत्व समझें। फिर माँ बताती हैं, यह एक गूढ़ आध्यात्मिक घटना है जो अबाध रूप से हमारे जाने बिना वर्ष के इस विशेष दिन घटती है। और वास्तव में ये हर एक घटना का जो वर्ष होता है उसका एक रिद्म होती है। अंतरात्मा अपने शरीर को पीछे छोड़ देती है और ऊपर और ऊपर की ओर यात्रा करती है। आमतौर पर यह चीज रात को होती है और सुबह अगर व्यक्ति सचेत रहे, कई बार उसको रात में स्वप्न के रूप में कोई ना कोई चीज दिखाई देगी अगर कॉन्शियस है, या सुबह उठेगा तो एक कोई चीज अंदर में। और यहाँ पर पूरा दिन का प्रोग्राम हम सबको पता है, आश्रम जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और पर्पस यही होता है कि एक क्रम चलता रहता है। फिर माँ बताती हैं पेज 7 पर, हर चीज का एक की एक लय होती है। और इसकी बात चर्चा हो रही थी कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे होगा कि कभी कभी बहुत अद्भुत प्रोग्रेस होगी, ये नहीं कि हम लोग बहुत एस्पायर कर रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, वो गाड़ी बहुत सुंदर चल रही है, फिर एक उसमें रुकावट आती है। अब वास्तव में वो रुकावट भी हमारी प्रगति का हिस्सा है। अब रुकावट क्या आती है कि हमारे अंदर जो कठिनाई है वो बाहर निकलेगी, तो अवसर है। अगर हम इसको अवसर के रूप में लें तो हम कई सारी चीज़ें बाहर कर सकते हैं। हमारे यहाँ दिवाली जिसको नया वर्ष कई लोग मानते हैं, उस समय एक परंपरा है, परंपरा अब मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या परंपरा है, लेकिन कम से कम हमारे घर में जो होती थी वो मालूम है। तो उसमें हम लोग सूप लेकर के पीटते हुए सूप को ये कहते थे, निकल दरिद्र आ लक्ष्मी। अब बेसिक आइडिया ये था कि अब नया साल शुरू हो रहा है तो हम अपने घर से उन चीज़ों को निष्कासित कर रहे हैं जो हमको छोड़नी है फिजिकल लेवल पर भी। कई लोग करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं, मैं भी करता हूँ आई एम श्योर। कई लोग आपके पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको आप बाहर करते हो या किसी को देते हो ताकि आपकी यहाँ स्पेस बने नई चीज़ों के आने के लिए। तो सेम चीज़ होती है जन्मदिन के प्रोसेस में, कई चीज़ें हैं जिनको हमको देखना है अंदर में, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, गतियाँ हैं जिनको हमको बाहर करना है और फिर नई चीज़ों को आने के लिए स्थान बनाना है। क्योंकि भगवान की तो समस्या यही है, वो आए देखें कि भाई हॉल भरा हुआ है, बहुत शर्मीले संकोची स्वभाव के हैं, तो वो खड़े रहते हैं थोड़ी देर, अब क्या करें, कभी ज़मीन में बैठ जाते हैं पर आमतौर पर हम द्वार भी नहीं खोलते। जबकि होना ये चाहिए कि हमको उनके लिए स्थान खाली रखना चाहिए। कौन सा स्थान, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, अपना जो सिंहासन है कि प्रभु ये आपकी जगह है। एक दिन मैं देख रहा था, हाल फिलहाल एक जन्मदिन देख रहा था मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा था नॉर्मल ढंग से। अब वो डिवोटी हैं तो उन्होंने साइड में एक श्रीमाशी अरविंद का भी एक चित्र रख दिया था नीचे, एक नीचे मदर्स म्यूजिक भी। ये करने की क्या जरूरत है, जो या अगर स्थान देना है तो फिर उनको उच्चतम स्थान दो, और नहीं तो फिर मत दो, मतलब फिर जबरदस्ती एक खाना पूर्ति करना। तो हम लोग कई बार ये करते हैं कि थोड़ा इस संसार का भी थोड़ा उधर का भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अंदर से खाली नहीं करेंगे तो कहाँ से आएंगे। और वो सावित्री में तो इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है श्री अरविंद ने, पहले कहते हैं कि जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ जिसमें ऐसे अवसर आते हैं जब हमको कुछ पता नहीं चलता, वे नथिंग वी कैन सी बट ड्रिफ्ट एंड बेल, ए माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल। अब उसके बाद जो पंक्तियां हैं वो वास्तव में ये जन्मदिन के ऊपर सटीक बैठती हैं। ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, आवर सोल सेल जस्टिफाई आवर चेकर्ड वॉक, ऑल सेल कम नियर दैट नाउ इज नॉट और फार। लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग क्या है, एक डेट फिक्स्ड है आपकी, वही असल जन्म जिस दिन हम पहुंच जाएंगे भगवान के पास। उसमें कहते हैं आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। अब वो दिन वास्तव में हमको ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि भगवान से मिलन का दिन है। तो ये गुड़ आध्यात्मिक घटना है और हर चीज में एक लय, हर क्रिया के लिए, पेज नंबर 7, हर क्रिया के लिए, हर सिद्धि के लिए, हर गति के लिए समय की एक निश्चित अवधि होती है, वो अलग अलग होती है। इसी को हम लोग कोई राहु काल, शनि की दशा, पता नहीं क्यों सूर्य की दशा, ये सब इतना पॉपुलराइज नहीं है लेकिन ये सब हम लोगों को प्रगति के लिए होती हैं। और अगर हम इसको प्रगति के रूप में लें तो इट इज़ ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और ये मैंने देखा है लोगों के जीवन में कठिनाई आती है, आप उसको प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू से लो तो जब वो बाहर निकलते हैं आप उससे, तो आपने छलांग ले ली होती है। और अगर आप इसको प्रगति के रूप में नहीं लेते, अरे क्या कठिनाई हो गई, कैसे भी मैं इससे निकलूं, आप सारे राहु केतु सबको संतुष्ट कर रहे हैं, फिर वो चली तो जाएगी, वो रिदम ऑफ टाइम है। अंत में जिस पंडित ने पूजा की होगी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज ओके, ये हमारा सोशलिज्म है, इट्स फाइन। लेकिन वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए वे चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काल की गति को समझना, क्योंकि शनि भी सूर्य के ही पुत्र हैं और कोई नहीं है। पहले शनि आते हैं, हमको तैयार करते हैं सूर्य के लिए। तो उस दृष्टि से हम देखें काल की गति को, रिद्म को। समय की अनगिनत अवधियां हैं जो उलझी हुई हैं, लेकिन हर चीज एक प्रकार की लय से नियंत्रित रहती है जो उस चीज को अपनी लय देती है। जो कहा ना, सब दिन होतना एक समान, कोई भी कष्ट सदा सर्वदा नहीं रहेगा, कोई भी हंसी खुशी के दिन सदा सर्वदा एक नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज है जिसको अगर हम पकड़ लेंगे तो सदा सर्वदा बढ़ती रहती है, और वह है अभीप्सा। इसी को सावित्री में इसका भी वर्णन है कि कैसे वैक्सिंग एंड वेनिंग चंद्रमा का, और अंत में एक स्टेज आती है जब आप सूर्य की ओर मुड़ जाते हैं, तब ये उतार चढ़ाव खत्म हो जाते हैं, या होते भी हैं तो पता नहीं चलता। सनलिट पाथ का अर्थ यही है कि जीवन में लोग कहते हैं अरे उसके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आप मस्त हैं क्योंकि आप सूर्य आलोकित पथ पर चल रहे हैं। और फिर एक चीज और बताते हैं, अंतिम तीन पंक्तियां इस पेज पर, लेकिन हर व्यक्ति ध्यान दे तो ये अनुभव करेगा कि उसकी लय बिल्कुल उसकी अपनी है, उसके पड़ोसी की लय वही नहीं है। लेकिन जिस तरह ऋतुओं की एक खास लय होती है जो सब मिलाकर काफी नियमित होती है, उसी तरह व्यक्तिगत जीवन की अपनी ऋतुएं होती है। कम से कम मेरे जीवन में मैंने बड़े इसको स्टडी किया है, क्योंकि शेरविंद का एक पत्र मैंने पढ़ा था, तो उसमें वो बताते हैं कि उनके जीवन में 12 ईयर की साइकिल चलती थी। कुछ लोगों के जीवन में 7 साल की चलती है, कुछ लोगों के जीवन में 12 ईयर्स की साइकिल चलती है। और अगर उसको ध्यान से पढ़ें देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लगभग लगभग, और फिर उसमें थोड़ी मेजर साइकिल चलेंगी 20 साल की, उसमें एक चेंज आता है आपको, एक जैसे एक नई सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और तब ध्यान से देखें तो लगता है कि काल भी वास्तव में भगवान का दास है। शेरविंद जी कहते हैं कि टाइम को एक बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, 4 8s में एक को टाइम कहते हैं, टाइम को, और हमको समझना है कि काल को के साथ हमें कैसे डील करना है, ना उससे डरना है ना विचलित होना है, वो मित्र है या शत्रु है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही ढंग से लें तो आपका मित्र है, और अगर आप उससे घबराएंगे डरेंगे तो फिर उलट पुलट के टूटते फूटते बिखरे हुए पहुंचेंगे। अब पेज नंबर 9 पे माँ से किसी ने पूछा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि साधारणता लोग अपने जन्मदिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों बना देते हैं। यह सच है कि आपने एक बार लिखा था कि और दिनों की अपेक्षा जन्मदिन पर व्यक्ति को भौतिक सत्ता अधिक उद्घाटित और सीमा के प्रति अधिक ग्रहणशील होती है। अब सीमा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रही है, यह भौतिक सत्ता या शरीर के जन्मदिन का प्रश्न नहीं है। इस दिवस को व्यक्ति को इस रूप में लेना चाहिए कि उसके अंदर एक विकसनशील नवजन्म हो रहा है, जिसकी बात हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग घर में भी गृह प्रवेश के पहले पूजा करते हैं ना, ये इसका लॉजिक है, और कई लोग उसको मनाते हैं, एंड देयर इज अ लॉजिक टू इट, क्योंकि वो आपके लिए वो एक रिपीट करता है जो आपने आह्वान किया था। वो ये नहीं कि अब खत्म हो गया, अब हम आज हमने भगवान का आह्वान कर लिया, कल हमारे पास सारे असुर राक्षस ड्रिंक एंड डाइन और वाइन ये चलेगा। आप हर एक साल एक प्रकार से उस रिद्म को रिपीट करते हैं, आप स्मरण करते हैं, इन्वोक करते हैं, और इसे वह अपने जीवन के एक नूतन वर्ष के प्रति उद्घाटित होने का सुअवसर बना सकता है। सीमा ने जन्मदिन को यही अर्थ और महत्व प्रदान किया है। यही चीज है हमारे यहाँ, जब हम सीमा श्री अरविंद का जन्मदिन मनाते हैं या 29 फरवरी का मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक फेस्टिवल नहीं है, ये वो अवसर नहीं है कि हम लोग, कई लोग इसको इस तरह से कि बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछें तो प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, केवल शांत रूप से एक ध्यान करें लोग और कुछ रीडिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं पर वो सीमा का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम डांस रख रहे हैं बच्चों का, दैट्स नॉट द आइडिया। हम वही भूल कर रहे हैं जो हम अपने जन्मदिन पर करते हैं। वो दिवस है सीमा के यहाँ अवतरण, उस पर हमें ना केवल मनन करना है, ध्यान करना है, बल्कि जुड़ना है, क्योंकि हम लोग उनकी संतान हैं। तो मुख्य रूप इसमें ग्रहणशीलता की है। अब आगे ये बहुत सुंदर वैसे कविता है इसमें आर को उसके जन्मदिन दिवस पर, लेकिन इसमें जो रिद्म है वो इंग्लिश में है तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ रीड फ्रॉम कलेक्टेड पोएम, पढ़ी होगी हम सब में कई लोगों ने, मुझे तो बहुत आनंददायक वो कविता लगती है। इंग्लिश में वो पंक्तियाँ हैं, फियर नॉट फॉर द स्टॉर्म्स दैट स्वेल विंड्स दैट स्वीप, तो वो कहते हैं भय नहीं करो, क्यों, Always our captain holds the rudder well. He does not sleep. और आगे बताते हैं, even they who sink in the victorious flood. देखिए काल की गति में सब शुभ है, कल्याण श्रद्धा. Even they who sink in the victorious flood, where do they sink into his breast? He who to some gives victory, joy and good, to some gives rest. अब मृत्यु क्या है? थोड़े दिन की विश्राम है. ये सैड, बुरा हो गया, दुख, ये नई सृष्टि के साथ नहीं मेल खाता है. थोड़े दिन विश्राम करेगा, माने इस पर भी बहुत कुछ, जन्म, लाइफ एंड डेथ का भी एक रिद्म है, उसकी भी बात करते हैं. फिर कुछ संदेश है जो माने साधकों को दिए हैं, पेज नंबर 15 पर एक है. ईश्वर करे कि नव जन तुम्हारे हृदय में अभिव्यक्त हो, ये श्री अरविंद का संदेश है. मे द न्यू बर्थ बी मैनिफेस्ट इन योर हार्ट एंड माइंड एंड लाइफ, मतलब ताकि हमारा मन, प्राण, शरीर उस अभिप्सा से जागृत हो सके जिसको लेकर के हमारा भौतिक जन्म हुआ है. मैनिफेस्ट, वह तुम्हारी सत्ता, मन और दृष्टि, संकल्प, भावना, जीवन तथा शरीर के सभी भागों को अपना ले. सोचिए अगर जन्मदिन के दिन हमारी ऐसी अभिप्सा हो कि मेरे मन में मां, प्राण में मां, हृदय में मां, शरीर में मां, कण कण में मां, कोशिका कोशिका में मां, कितना अच्छा रहेगा. ईश्वर करे कि तुम्हारे जीवन की हर तिथि, अब देखिए यहां पर वो एस्पेक्ट आ रहा है कि एवरी डे कैन बी ए बर्थडे, तुम्हारे जीवन की हर तिथि उसी के विकास और अधिकाधिक पूर्णता को की तिथि बनती जाए, जब तक कि तुम्हारे अंदर का सब कुछ मां का बालक ना बन जाए. यही है चंद्रमा और सूर्य का संदेश. चांद उठता है, गिरता है रात को, वो बेचारा अपना काम करता है अलग अलग रिद्म में. अब सूरज निकलता है तो चांद बैकग्राउंड में चला जाता है. तो हमारे जीवन में भी ये एक राइज एंड फॉल, इसके अच्छे बुरे समय, लेकिन एक बार हम सूर्यालोकित पथ पे आ जाते हैं तो फिर वो सूरज नहीं ढकता है. देन वी रीच द परफेक्ट इंटीजर ऑफ द सोल. बाहर तो क्योंकि अभी, इसीलिए श्री अरविंद जो फाइनल एज आएगी उसके बारे में क्या कहते हैं, द एवरलास्टिंग डे, द सुप्रीम कंज्यूमेशन, एवरलास्टिंग डे. याद आ रही मुझे चंद्रमा के 6 होने की कहानी, बट आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन. शिव जी जो धारण करते हैं, इट्स ए वेरी सिंबॉलिक स्टोरी. एनीवे, ईश्वर करे उनके प्रकाश, शक्ति तथा उपस्थिति से अपने आप को घेर लो, वह तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें आंख की पुतली बनाए रखें और तुम्हें अपने हृदय में छिपाए रखें, जब तक कि तुम्हारा आंतरिक और बाह्य अस्तित्व एक ही ना बन जाए, जब तक कि वह शांति, बल तथा आनंद की अभिव्यक्ति ना बन जाए. अब वो लिखते हैं अलग अलग साधकों को क्या करना चाहिए. तो देखिए हम लोगों ने सुना है कि भाई अहंकार के ट्रेजेस भी हटा दो भगवान, और उसकी जगह केवल अपने आप को स्थापित करो. श्री अरविंद कैसे लिखते हैं, किसी के जन्मदिन का संदेश है ये. अपने हृदय से अहंकार की छाप को मिटा दो, मतलब अहंकार मिटा दो तो छाप भी नहीं रहे कि कहीं वो धूल उल पे कहीं उसकी छवि हो, और उसका स्थान श्री मां के प्रेम को लेने दो. अपने मन से समस्त व्यक्तिगत विचारों और निर्णयों को झाड़ दो, वो तुम्हारे अंदर मां को समझने का विवेक जागेगा. मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्या हुआ, केवल मां से जुड़ने का संकल्प लेके चलो. पेज 17 पर बहुत ही सुंदर है जहाँ श्री अरविंद, ये भी जन्मदिन का एक मैसेज है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं. श्री अरविंद कह रहे हैं, लिख रहे हैं किसी साधक को जन्मदिन के अवसर पर, योग रथ के 4 पहिए हैं. जगन्नाथ रथ की पूरी हम लोगों ने उस पर तो शेरविंद ने जो लिखा है अद्भुत है। योग रथ के चार पहिए हैं, ज्ञान की स्पष्टता और आंतरिक आत्मदृष्टि। ये कभी धूल नहीं होना चाहिए। आदमी धसा हुआ है अंधकार में, वो विवेक, इसीलिए पूरी गीता में सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को कहते हैं विवेक को जगाओ। और वो बार बार ये क्वेश्चन करते हैं, आप कर्म, आप बोलिए ना हाँ या ना, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो कहते नहीं कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो कहते आप ये स्पष्ट उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बुद्धि तो मेरी यही कह रही है कि मैं संन्यास ले लूं, आप कर्म से श्रेष्ठ मैं मान रहा हूं। तो वहीं वो कह रहे हैं कि अभी बुद्धि है तुम्हारी वो धसी हुई है, विवेक को उठाओ, विवेक को जागृत करो, ताकि वो सदैव हमारे, हम कहीं पर भी हों किसी भी अवस्था में विवेक को ना खोएं। यही बाय द वे ओडिसियस फिल्म में भी हम देखते हैं कि सभी अवस्थाओं में उसका विवेक जागृत रहता है, यहाँ तक कि जब वो एकदम लोटस के वो बीज खा के भी विस्मृत हो गया है सब कुछ, लेकिन विवेक जागृत रहता है, उसको कहीं ना कहीं उसको खोज है। तो पहली चीज है ज्ञान की स्पष्टता और आंतरिक आत्मदृष्टि, कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अहंकार को वश में करना दूसरा ये है कि भाई लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। गुरु नानक जी ने भी इसी बात को अपने ढंग से कहा है कि भाई अस्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन बेचारों का बड़ा गंदा काम है। कुछ लोगों का काम यही होता है कि आपके अहंकार को चिपिंग करें, उनको पास रखना चाहिए, मतलब मित्र हैं। गुरु नानक जी ऐसे कहते हैं कि पाप हमारे धोए, वो हमारा बोझ उठा रहे हैं बेचारे। तो इसलिए अहंकार को वश में करना, वो सिखाते हैं हम लोगों को। तो यदि विवाह में, विवाह के बाद पत्नी या पति आपकी मिस्टेक्स को बता रहे हैं, तो समझिए भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई है जो आपको स्पष्ट रूप से बताने वाला है। और यदि बच्चा भी बता रहा है तो देखिए सुनिए। और तीसरा रथ का पहिया है प्रेम। अब देखिए कनेक्टेड है ये सारे, प्रेम। और चौथा है निस्वार्थ तथा समर्पित कार्यों में ईमानदारी भरा अध्यवसाय। तो ये प्रेम, निस्वार्थ सेवा, ज्ञान, ये तीन जो हम लोगों ने सुने ही है। साथ में शेरविंद कहते हैं अहंकार को हटाओ, माने रथ के ऊपर कौन बैठेगा, मैं योग कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं भक्त हूं, तो है कौन, मैं है। मां से किसी ने कहा मैंने ये ऑफरिंग वगैरह दिया है, माँ कहती देखो बेटा तुम अगर याद रखोगे कि तुमने क्या दिया है, तो भगवान को स्मरण रहने की आवश्यकता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और तब इसका अर्थ है कि तुमने भगवान को नहीं दिया है, तुमने अपने अहंकार को दिया है। तो निस्वार्थता की बात होती है इसमें, निस्वार्थता समर्पित कार्य। जिसके पास ये हो वह पथ पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। सेफ्टी, ज्ञान, ज्ञान की स्पष्टता को उन्होंने आंतरिक आत्मदृष्टि कहा है, ये नहीं कि किताबें मैंने पढ़ ली है। किताब पढ़ना एक बात है, उसको अप्लाई करना अलग बात है। अहंकार को वश में करना दूसरा पहिया है, प्रेम तीसरा पहिया है, और चौथा है निस्वार्थ तथा समर्पित कार्यों में ईमानदारी भरा अध्यवसाय। स्वार्थी कार्य में तो लोग करते हैं, क्यों हमको बेनिफिट मिलेगा एम्बिशन से, लेकिन भगवान का काम निस्वार्थ भाव से। ऐसे ही एक मैसेज है पेज नंबर 20 पर, ये इंग्लिश में बड़ा सुंदर है, दिस इज द लेसन, इट इज द लेसन ऑफ लाइफ, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे। यह वो सबक है जो जीवन हमेशा व्यक्ति को सिखाता है कि इस जगत में हर चीज उसे विफल कर देती है। जिसने सीख लिया वो, मतलब भगवान ने उसको डबल ट्रिपल प्रमोशन देके आगे बढ़ा दिया। आगे क्या, अगर वो भगवान की ओर पूरी तरह से मुड़ जाए तो एकमात्र ये ही है जो उसे विफल नहीं करते। ये सीख लिया तो सब सीख लिया। ऐसी बात नहीं है कि चूंकि तुम्हारे अंदर कोई बुरी चीज है इसलिए प्रहार तुम्हारे ऊपर पड़ता है। सभी मनुष्यों के को आघात इसलिए सहने पड़ते हैं। ये तो कभी नहीं एडॉप्ट करना चाहिए कि अरे मेरे को भगवान ने क्यों चुना है आघात देने के लिए। एक्सक्यूज मी, एज दे से, ढूंढ लाओ कोई जिसको आघात ना पड़े हो। किसी ने तो बड़ी सुंदर इस पर लिखा है कि तुम्हें कैसे पहचानोगे कि ये भगवान का भक्त है जो पहुंचा है, कहते हैं उसके मुंह पर आपका नाम और पांव में छाला होगा। नहीं पहुंचते वहां तक उसके बिना। ऐसी बात नहीं कि चूंकि तुम्हारे अंदर कोई बुरी चीज है इसलिए प्रहार तुम्हारे ऊपर पड़ता है। सभी मनुष्यों को आघात इसलिए सहने पड़ते हैं क्योंकि वे ऐसी चीजों को पाने के लिए कामनाओं से भरे रहते हैं जो हमेशा बनी नहीं रह सकती और कभी तो वे उन्हें पा नहीं सकते, उन्हें खो बैठते हैं। और अगर पा भी लें कुछ समय बाद वही चीज उनके अंदर निराशा ले आती है और उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती। भगवान की ओर मुड़ना ही जीवन का एकमात्र सत्य। आप सोचिए ये मैसेजेस श्री मां श्री अरविंद देते थे लोगों को जन्मदिन के अंदर, कार्ड्स हैं सारे, कितने सारे। एक लास्ट पार्ट पढ़ लेंगे, पेज 25 पर है। जिसे नवजन्म कहा जाता है वो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक चेतना में जन्म है। अब ये आ गया, एक फिजिकल बर्थडे है, एक न्यू बर्थ है। वो अपने अंदर आत्मा की किसी ऐसी चीज को वहन करना है जो अंतरात्मा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जीवन को शासित करना और अस्तित्व की स्वामिनी बनना शुरू कर सकती है। यानी हम उस दिन हमारी जो एस्पिरेशन है वो हमें गवर्न करे। माता जी का एक मैसेज एक जगह, लेट योर हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑर्गेनाइज योर लाइफ। बाकी चीजें हैं जीवन में लेकिन जब भी उसमें और हमारी एस्पिरेशन में टकराव आए तो हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या चुनना है। और अंत में पेज 26 पर, असल में अधिकतर ये बाय द वे सीमा के जो वाणी है मातृवाणी के ये लास्ट कन्वर्सेशन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। असल में अधिकतर मनुष्य कैदी के समान हैं जिनके लिए सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, अतः उनका दम घुटता है। दम घुट रहा है इसलिए क्योंकि हमको न्यू बर्थ चाहिए लेकिन हमको दरवाजा नहीं खोलना है, समस्या ये है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन उनके पास वह कुंजी है जो दरवाजों और खिड़कियों को खोल सकती है पर वे उसका उपयोग नहीं करते। निश्चय ही ऐसा भी समय होता है जब उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनके पास कुंजी है। ये ठीक है कि लोगों को लगता है यही सब कुछ है, उसी में वो सब कुछ कर रहे हैं, परंतु इसे जान लेने के बहुत बाद में भी, यह बताए जाने के बहुत बाद भी वे इसका उपयोग करने से झिझकते हैं और उन्हें संदेह होता है कि इसमें दरवाजे और खिड़कियां खोलने की क्षमता भी है क्या। मतलब कि क्या सच में दरवाजा खोला जा सकता है। सावित्री में एक पंक्ति आती ना माइंड पर जो खड़े हैं, कहते हैं कैन स्टिल द डोर बी ओपन, कैन द वे बी फाउंड। और क्या दरवाजे और खिड़कियां खोलना अच्छा होगा, ये भी सोचते हैं कि भाई हम कंफर्ट जोन में हैं अभी, कोई अच्छी बात थोड़ी। हो तो बताई कहानी दिल्ली आश्रम की कि वो एक वकील और एक सेठ जी दोनों आते थे संडे संडे को सुनने के लिए, सब 60 के ऊपर दोनों। एक दिन सेठ जी के बेटे ने कहा कि मैं भी आज जाऊंगा, तो सेठ जी ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। वकील जी वहीं थे, कहा आपने उसको थप्पड़ क्यों लगाया, कितनी अच्छी बात कर रहा था वो। कहते अरे आप समझेंगे नहीं वकील साहब, हम लोग तो क्या है ना जीवन को समझते हैं, जाते हैं सुन के आ जाते हैं, थोड़ी कोई सीरियसली लेते हैं उस सत्संग को। ये तो यंग लड़का है, ये तो भड़क जाएगा, भटक जाएगा, ये तो उसको सच में मान लेगा कि हाँ मुझे भगवान को खोजना है। ये रियल स्टोरी है बाय द वे, थोड़ा बहुत इसमें मिर्च मसाले लगे गए हैं लेकिन स्टोरी रियल है। ये हम लोगों की समस्या है, थोड़ा डर बना रहता है जब ये दरवाजे और खिड़कियां खुल जाएंगे तो क्या होगा, और वे डरे रहते हैं। उन्हें इस प्रकाश और स्वतंत्रता में खो जाने का डर होता है। वे उसी में बने रहना चाहते हैं जिसे वो अपना आप कहते हैं। उन्हें अपना मिथ्यत्व और अपना बंधन पसंद है। उनमें कुछ चीज हमें पसंद करती है और उनसे चिपटी रहती है, इससे चिपटी रहती है। वे इस ख्याल में रहते हैं कि अपनी सीमाओं के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं होगा। वास्तव में हर उपलब्धि जिसको हम बांध के चल रहे हैं, हमारी सीमा है, वो हमको लिमिट कर रही है, बांध रही है, हम उसके परे नहीं देखना चाह रहे हैं। माता पिता और बच्चे के संबंध में भी यही होता है, वो नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि वो अपनी सीमा में बंधे हैं, हमारे समय में, हाँ भाई आपके समय में, काल की गति बदल रही है, तो यू हैव टू लुक एट दैट। इसलिए यात्रा इतनी लंबी है, इसलिए वह इतनी ध्रुव है, क्योंकि यदि सचमुच कोई अपनी अस्तित्वहीनता के लिए सहमत हो, टैगोर के पास कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए गया तो पहले उनके सेक्रेटरी राजा सुबोध मलिक उससे मिला, तो उन्होंने कहा आप भी दे दीजिए, वो भी बड़े फेमस हैं, कि भाई आप भी थोड़ा कुछ अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। उन्होंने पुस्तक पे लिखा नो दाई सेल्फ, साइन कर दिया। अब वो टैगोर के पास गए, अब वो सोच रहे हैं अब वो क्या लिखेंगे, टैगोर ने देखा, मुस्कुराए, नीचे लिखा फॉरगेट दाई सेल्फ। जो खोने को तैयार नहीं है वो कहां पाएगा। तब द्रुत आलोक में और आनंद में हो जाएगा, इसलिए यात्रा इतनी लंबी है। पर शायद इस तरह, उस तरह नहीं जैसे लोग हर्ष और आसानी को समझते हैं। तथ्य तो यह है कि ऐसे बहुत कम हैं लोग जिन्हें संघर्ष पसंद नहीं है। बहुत कम लोग इस बात से सहमत होंगे कि रात का ना होना संभव है। वे प्रकाश की कल्पना अंधकार के उल्टे रूप के सिवाय ही कर ही नहीं सकते। छायाओं के बिना चित्र ना होगा, संघर्ष के बिना विजय ना होगी, और कष्ट सहन के बिना आनंद ना होगा। बस यही उनकी धारणा है, और जब तक कोई इस तरह सोचता है तब तक आत्मा में उसका जन्म नहीं हुआ है। जय मां।
रोचक आप बोलते हैं, कितना सुंदर सुनाते हैं, और जितना जो कुछ शेष छोड़ देते हैं वो भी सुनने का मन करता है, चाहे वो चंद्रमा की कथाएं हो, यानी कितनी सारी कथाएं आपको याद है। तो और बहुत रोचक अंत में कितना सुंदर, कितना गहन नो दाई सेल्फ एंड फॉरगेट दाई सेल्फ वाला आपने उदाहरण दिया है। बहुत आभारी हैं हम कि आप ये जो गुण तत्व माँ शेयरबिंद ने प्रस्तुत किए हैं उसे आप इतने सुंदर तरीके से, एक प्रोफेसर के सिलेबस तो वही होता है, लेकिन अच्छा प्रोफेसर जैसे बहुत अच्छा समझाता है तो उत्सुकता रहती है जानने की, सुनने की। मैं आप सभी साधकों के जो यहाँ पर इस मंच में है, मैं उनके प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ। इससे पूर्व के आप प्रश्न बोले, मैं एक प्रश्न, दो प्रश्न भैया स्वयं पूछना चाहता हूँ
अवश्य।
और ये है कि जन्मदिन से या जन्मदिन पर जो, जिसे हम फिजिकल बर्थ बोलते हैं, द्विज वाली बात नहीं, तो जन्मदिन पर क्या संबंध है जन्म के समय का और ग्रहों की स्थिति का?
ग्रहों की स्थिति जो है वो वास्तव में उसका इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं, लेकिन वो ग्रहों की स्थिति वास्तव में ग्रह स्वयं दास हैं, वो काल की गति उनको चला रही है, घुमा रहा है। कल्पना कीजिए कि काल के पास एक बहुत बड़ी रस्सी है, वो सबको बांध के घुमा रहा है। तो जो मूल चीज है, अब एकदम शुद्ध उससे कि उस क्षण का महत्व है, बट वी नीड नॉट गोइंग टू दैट, उस दिन का महत्व ही काफ़ी है आश्रम में, यही चीज। पर ऑफकोर्स उस मोमेंट का अपना एक, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि उस मोमेंट का अपना एक महत्व होता है, परंतु मूल रूप है कि उस दिन, अगर संक्षेप में कहें तो। मोमेंट को रिकॉर्ड करना भी वो बड़ा कठिन है कि किसने कब, फिर कई बार क्या होता है ना, हम पूरे दिन को खो देते हैं केवल इसलिए कि वो मोमेंट कौन सा था, तो लेट द होल डे बी दैट डे।
तो जन्मदिन के दिन मैंने किसी आश्रम के साधक से पूछा था, तो उसका कहना था कि जन्म के समय का बड़ा महत्व है, तो उस समय के आगे या पीछे आप एकाग्र अपने अंदर की दुनिया में जाएं, निर्भर तो उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं, क्या आप क्या सकते हैं?
हाँ नहीं बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि उस क्षण का महत्व है, लेकिन उसमें कई बार होता है कि हम उस, अब मान लीजिए क्षण कितना करेक्टली डॉक्यूमेंटेड है, अगर वास्तव में उसमें जाएं, ग्रहों की स्थिति, मतलब मन हमारे जाल में ना खो जाए। इसलिए सरल सहज मार्ग यह है कि भाई वो दिन है, पूरा दिन माताजी का दिन है, और इसको माताजी ने बड़ा सरल कर दिया अपने उदाहरण से। उस दिन लोग माँ से मिलते थे, तो आप समझिए कि फिजिकल लेवल पर वो उसी मोमेंट का वो रिप्रोडक्शन है। माँ ये नहीं पूछती थी कभी भी कि किस मुहूर्त में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वो तो जब बुलाती थी समझिए वो नया जन्म है। तो जब कहा ना कि जब हम ध्यान करने बैठ गए वो नया जन्म हो गया। और जैसा कहा लार्जर ट्रुथ तो ये है कि भाई एवरी मोमेंट वी शुड बी न्यू बॉर्न, ये भी माँ ने लिखा है। तो ये ठीक है कि उसका अपना महत्व है उस मुहूर्त का, लेकिन ऐसा ना हो कि कई बार वी लूज साइट ऑफ द फॉरेस्ट इन काउंटिंग द ट्रीज, कई लोग उसमें। और फिर सर्टेनिटी से कौन कह सकता है वो एग्जैक्टली यही टाइम है, नहीं है इस, ये पत्रियों में भी ये पत्र जो बनते हैं उसमें भी ये समस्या होती है। तो इट्स मच बेटर टू गो बियॉन्ड दी मूवमेंट ऑफ द ग्रह नक्षत्र एंड टर्न टू द वन, इट्स इजियर और बेटर हर दृष्टि से।
हमारे बीच में आनंद जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आमंत्रित है आनंद जी आपका प्रश्न, कृपया पूछिए। आनंद जी आप म्यूट हो तो उसे खोल दीजिए और आप प्रश्न अपना पूछिए।
या लिख दें तो कोई रिपीट कर देगा। हाँ जरूर जरूर।
समस्या दूर हो रही है माननीय उपपितानी जी, हमारे बीच में प्रणाम करता हूँ। आप कृपया प्रश्न पूछिए।
कहिए कहिए दानी जी।
अभी जो इस वार्ता में बात अभी मुहूर्त की हो रही थी, तो उसमें जन्मदिन की बात करते हैं, वो जन्मदिन तारीख के हिसाब से तिथि के हिसाब से।
तो ये तो दो कैलेंडर के उस पर हुआ कि सूर्य का कैलेंडर और चंद्रमा का कैलेंडर। तो
मैं इस पे थोड़ा सा
हाँ
पांडिचेरी में आपने बाजी कपूर जी उनसे एक बार ऐसी चर्चा चल पड़ी और उन्होंने मुझे अपने जीवन का घटना बताई कि वहां से मिलने के लिए शायद 21 तारीख को गए इस मास और मदर ने मुझे मिलने के लिए मना करने के उनसे कहा कि आप 28 तारीख को आइए और जब उन्होंने आकर कहा कि क्या बात हो चुका है आप जो है और घर पे आकर के उन्होंने जब इसके बारे में डिटेल मालूम की तो मालूम पड़ी 28 को उनका तिथि के हिसाब से चुकी है।
हाँ नहीं ठीक है, मतलब ये संभव है, लेकिन अगर व्यक्तिगत अनुभव हैं इसके विपरीत भी हैं, जैसा मैंने बताया मुझे पता नहीं था जन्मदिन का महत्व और 19 जून को ठीक मैं 18 जून की शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, 19 जून को मैं लाइन में खड़ा था श्री अरविंद के कक्ष जाने के लिए, इसलिए नहीं कि जन्मदिन का महत्व मालूम है, इसलिए कि लाइन जा रही थी श्री अरविंद के रूप में और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो गेट डोर पर जब पहुँचा हूँ श्री अरविंद के तो मुझसे पूछा गया जन्मदिन, वो पूछते थे सबसे, तो जो जिनका जन्मदिन होता था उनको पहले इधर बैठा देते थे, बाकी लोग श्री अरविंद के कमरे में जाते थे। तो मेरा तो वही फिजिकल बर्थडे जो जिसको कहते हैं उसी दिन हुआ। तो देखिए इंडिविजुअल चीज़ें अलग, लेकिन अगर माँ के कृत्य को देखा जाए तो वो फिजिकल बर्थडे के दिन या कुछ लोग जिस दिन वो माँ को मिलते थे उसको वो अपना जन्मदिन मानते थे। तो अगर एक जनरलाइज किया जाए, बाकी ठीक है वो तिथि के हिसाब से, लेकिन अगर चंद्रमा का कैलेंडर जो तिथि से चलता है या सूर्य का कैलेंडर जो सन के उससे चलता है, अगर मेरे केवल एक इंट्यूटिव सेंस आई अंडरस्टैंड कि चंद्रमा के कैलेंडर का अपना महत्व है, लेकिन मैं तो सूर्य के कैलेंडर को ज़्यादा सही मानता हूँ, नॉट बिकॉज उसका वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई कनेक्शन है, लेकिन सूर्य पृथ्वी की गति का जो संबंध है वो चंद्रमा और पृथ्वी की गति से कहीं अधिक सटीक लगता है। दिस इज ऋतुएं बदलती हैं सब कुछ, तो आई पर्सनली फील कि सूर्य और पृथ्वी का जो संबंध है दैट शुड बी, मतलब बहुत ही निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ, बेटर एंड हायर देन चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, पर ये एक व्यक्तिगत वो है। माँ ने तो माँ लेकिन सोलर कैलेंडर को ही मानती थी, अगर माँ की उसमें देखें तो शी यूज टू एक्सेप्ट द सोलर कैलेंडर, और वो काल के परे हैं तो दैट डजंट मैटर। नहीं आई अंडरस्टैंड, तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताई अपनी, वो एक जो लोग मानते हैं वो जरूर माने, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई चंद्रमा और सूर्य का पृथ्वी का संबंध निकट का है, वो सच है कि दोनों इंटीमेटली कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप व्यापक दृष्टि से देखें तो सूर्य पृथ्वी के का जो संबंध है उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस सेंस में सूर्य का जो कैलेंडर है वो एक हायर सेंस में इट्स ए मच मच बेटर थिंग. प्योर सिंबल के रूप में मैं कह रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकली उसमें एस्ट्रोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, पर सिम्बॉलिकली इट्स ए मच बेटर. और फिर माँ ने जिसको मान्यता दे दी, हम लोगों के लिए तो वही अल्टीमेट हो गया. तो माँ ने तो सूर्य के कैलेंडर को ही उस हिसाब से, हालांकि वो ये नहीं कहती थी कि सूर्य का या चंद्रमा का कैलेंडर. कई लोग यहाँ पे अभी भी हैं जिनको माँ ने जिस दिन मिली और वो उनका बर्थडे वो उस दिन मनाते हैं और माँ उस दिन उनको वेलकम करती थी. वो सबसे उत्तम है कि हमारे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों अंधकार में प्रकाश देने वाली माँ, और जब प्रकाश है तो उसमें रास्ता दिखाने वाली माँ. तो वो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन हम हमारे अंदर ये अवेकनिंग हुई, आश्रम पहुंचे या समाधि गए, हमारा तो वही जन्मदिन. मतलब वो हाईएस्ट सेंस तो वही है, इट सुपरसीड्स.
पूछिए आप जो पूछे, नाम बताइए, हम पूछिए.
हाँ प्रणाम प्रणाम.
मैं, मेरा प्रश्न है क्या मैं अपने पूर्वजों का जन्म और निधन दिन मनाना चाहिए कि नहीं?
पूर्वज जो हैं वो पूर्वज हैं, उनके एसेंस को साथ रखना चाहिए जो अच्छी चीज़ें हैं. किंतु इन जनरल जो एडवाइस दी जाती है वो ये दी जाती है कि नहीं, उनको हमें आराम से उनके आगे की यात्रा में जाना चाहिए, जाने देना चाहिए. इस पर कपाली शास्त्री जी जो बहुत अच्छे ज्ञाता थे संस्कृत के, वेदों के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इट इज़ बेटर टू फॉरगेट, बेस्ट टू फॉरगेट, क्योंकि वो उनकी आगे की यात्रा है, हम उन्हें क्यों बांधें पृथ्वी के साथ. तो विच इज़ बोथ लॉजिकल एंड स्पिरिचुअली करेक्ट. अगेन पर्सनल सेंटिमेंट एक अलग बात है, परंतु अगर एक किसका वो एक विषय है जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं एक्चुअली श्राद्ध. अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आप अगर एक व्यक्ति का श्राद्ध कई वर्षों तक मना रहे हैं तो क्या हम भी ग्रीक्स और क्रिश्चियंस की तरह ये मानते हैं कि एक ही जन्म है? और यदि हम पुनर्जन्म में मानते हैं तो हम कब तक श्राद्ध बनाएंगे? एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या हम 50 साल बाद भी श्राद्ध मनाते रहेंगे तो फिर क्या हम पुनर्जन्म को नहीं मानते कि उन्होंने जन्म ले लिया है? तो ये प्रश्न है जो युवा पीढ़ी सही रूप है करती है और इसका सही उत्तर होना चाहिए. तो हम लोग तो इसको नहीं मानते ना कि भाई वो कॉन्स्टेंटली अब वहीं पर ड्वेल करते हैं. अब कहने वाले वो कहते हैं, परंतु ये तो एक प्रकार का फिर एक तर्कपूर्ण बात नहीं है. विश्वास अलग बात है, विश्वास जहां है वहां तर्क नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए. लेकिन अगर तर्कपूर्ण बात है तो ये माना जाता है कि 3 वर्ष में अधिकांश जो सोल्स हैं वो रीबर्थ ले लेती हैं. दूसरा, एक और चीज को कंप्लीट कर लूं, श्राद्ध सेरेमनी का जो पर्पस होता है वो आपको वैतरणी को पार करने के लिए किया जाता है. जब वो पहुंच गए प्राण जगत और उसके आगे, तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग, मतलब स्पिरिचुअली. हाँ
विनोद भैया पूछिए प्रश्न. जी नमस्कार.
59 पर है, सावित्री की पंक्तियां दी गई हैं, अ डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन, द बर्थ सप्लाई ऑफ आवर सोल देयर इज अ फिक्स्ड बाई इट्स एकल वाक. हिंदी में एकल वाक को चतुर्ंगी चाल लिखा हुआ है, तो इसका क्या
नहीं, अब वो हिंदी ट्रांसलेशन को तो ना ही पूछे. पर वो इस तरह से चेकर्ड वॉक, शायद इसको घोड़ा जो है ढाई घर चलता है चेस के हिसाब से, लेकिन चेकर्ड वॉक का जो लिटरल मीनिंग है ये कि प्रकाश और अंधकार दोनों से होते हुए, कि अच्छे दिन बुरे दिन दोनों जीवन में आते हैं और उसके थ्रू हम गुजरते हैं, और अंत में जब वो शाश्वत दिन आता है तब हमको समझ आता है कि जो बुरे दिन थे उसमें भी भगवान हमारे साथ चल रहे थे और अच्छे दिन में तो चल ही रहे थे. फर्क इतना है कि अच्छे दिनों में हम उन्हें भूल जाते थे, बुरे दिनों में हम उनको याद करते थे. परंतु चेकर्ड वॉक का यहाँ यही आशय है कि दिन जो हमारे अच्छे दिन हैं, जिनको हम अच्छे दिन कहते हैं, जिनको हम बुरे दिन कहते हैं, उन सबके पीछे जो एक आशय था, परम आशय जो भगवान की, भगवान जो कर रहे थे इन सब के माध्यम से, वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ.
तो प्रभु ने कर्ज लिखने का अर्थ ये जो खेल है, शतरंज का खेल है, उससे संबंधित बात हो गई.
हाँ वो अब वो ठीक है, अब कुछ चीजें ट्रांसलेट करना खासकर सावित्री इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट एक्चुअली इम्पॉसिबल. माने तो अब उनका पत्र है पृथ्वी सिंह नाहर को, उन्होंने तो ये लिखा है कि सावित्री इज अनट्रांसलेटेबल. यहाँ तक कि माने स्वयं फ्रेंच में ट्रांसलेट किए हैं सावित्री के कई पोर्शंस, पर उन्होंने कहा मैं अपने जॉय के लिए करती हूँ, इसको प्रिंट नहीं करना, यहाँ तक उन्होंने कहा है. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अब कोई भी चीज़ को रिजिड नहीं बना सकते हैं. कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं लोग कि हम सावित्री हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो सीख लो पढ़ने के लिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो गुरुमुखी कब की परंपरा है ना, गुरुमुखी की बात होती है. गुरुमुखी क्या थी? गुरुओं की भाषा. तो इफ़ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली, लेकिन अब ठीक है इस अपना अपना अपनी अपनी राय है, पर जो ओरिजिनल इंग्लिश का जो आनंद है, और अगर हमें नहीं भी समझ आती तो उसके अंदर जो रिद्म है, सबसे बड़ी बात सावित्री की है रिद्म है. आप जो भी ट्रांसलेशन है उसमें रिद्म कैसे कैप्चर करेंगे? हिंदी के ट्रांसलेशन में एक ही है जिसमें रिद्म कैप्चर की गई है कुछ हद तक, और वो माँ की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, वो विद्यावती कोकिल जी की हैं. हालांकि उसमें सावित्री के ओरिजिनल रिद्म कैप्चर नहीं है, लेकिन रिद्म है और वो माँ की स्पेशल ब्लेसिंग है. तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर हिंदी पढ़नी तो कायदे वन आसमी ऐसे की विद्यावती कोकिल जी की है, जो बड़ी अद्भुत है. बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल है.
भैया मेरा प्रश्न है कि रीबर्थ जो है ह्यूमन बीइंग्स का, यदि हमारे प्रेजेंट स्टेट में हमारे अपने ही बात करूं, तो ये क्या प्री प्लांड है या हम डिपेंड करेगा हमारे कर्मास पे कि हमारा रीबर्थ कहाँ होगा नेक्स्ट?
नहीं, रीबर्थ तो कर्म के ही उस पर है, लेकिन वो इस सेंस में नहीं है कि बुरे और अच्छे, पाप और पुण्य. ये तो एक क्रिश्चियन थियोलॉजी का इम्पोजिशन है भारतवर्ष में इस सेंस में. बाद में वो आई नो कि वो गरुड़ पुराण में रौरव नरक ना जाने क्या क्या, डबल सिस्टम ऑफ पनिशमेंट, डबल रिवार्ड. लेकिन अगर ओरिजिनल सेंस में जाएं वेदों में, तो मूल रूप से रीबर्थ एक आपकी फॉरवर्ड जर्नी है. इसी को शेरविन दिव्य जीवन में भी इसी का प्रतिपादन करते हैं कि रीबर्थ इज ए प्रोसेस. और भागवत पुराण जिसको आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि रीबर्थ एक पाप पुण्य की जस्टिस की जर्नी नहीं है, रीबर्थ एक आगे बढ़ने वाली यात्रा है. तो उसमें प्री प्लान डिस्टेंस में है कि भाई आपको आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं जा रहे हैं. गीता में उसका एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्ररी सत्य है, लेकिन वो एक स्मॉल ग्रुप के लिए, और वो भी अल्टीमेटली आपको छलांग लगाने के लिए, परंतु उसमें ना जाते हुए मूल रूप से ये आगे जाती है. तो अब आगे की यात्रा क्या प्री प्लान है? एक सेंस में हमारी रीबर्थ ही नहीं, हर एक क्षण प्लान्ड है, ये भी सत्य है. लेकिन वो एक ऐसे लेवल का सत्य है कि उसको हम लोग अभी के जीवन में उतारना वही वाली बात होगी जैसे हाथी वो महावत ब्रह्म की बात नहीं सुनना. तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हमारी चॉइसेस जो हैं उसके अनुसार ये आगे का द्वार खुलता है. ये इट्स मच बेटर प्रैक्टिकल, और इसी बात को सीमा शेरविन सब लोग कहते हैं. पर एक हाईएस्ट ट्रूथ अगर पूछा जाए तो हर चीज प्री प्लान्ड है, क्योंकि कोई भी चीज इस पर छोड़ी नहीं गई है कि अगर मान लो मनुष्य पूरा बंगिल कर दे सारा अफेयर, फिर भी हमारी नियति निश्चित है. तो जो हमारी लास्ट पॉइंट है वो निश्चित है, उसको नहीं हटाया जा सकता. और लास्ट पॉइंट है हरि मिलन की आस, मतलब वी विल यूनाइट विद द डिवाइन. लेकिन अब वो हम किस रास्ते से जाएंगे, इस चुनाव के आधार पर हमारा जो रीबर्थ है वो निश्चित करता है. कि मान लो हमारे अंदर कोई अनुभव की चाह है जो अधूरी रह गई. अब कई हैं लोग आश्रम में भी रह के अंदर में ही रहता है आधा अधूरा कि भाई ऐसा होता वैसा होता. तो अब क्या क्या होता है? रीबर्थ होता है भगवान की चल तो ऐसा वैसा करके भी देख ले क्या होता है. तो कहने का अर्थ ये कि ये कुछ लोग हैं जो एक नैरो रोड से जाते हैं. कई लोगों के अंदर ये होता है कि हम ये भी अनुभव वो भी अनुभव, तो उसको भी लेके जाते हैं. रीबर्थ का पर्पस है आपको वो सारे अनुभव दे देना जिनसे अल्टीमेटली चैत्य सत्ता पोषित होती है. वो पाप पुण्य का चक्कर वो बाहर की चेतना का है, लेकिन वो पोषित होती है और आगे बढ़ती है भगवान की ओर. तो रीबर्थ की आवश्यकता होती है इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह वो डेवलप नहीं हुई है हमारी चैत्य सत्ता, इसको कुछ और अनुभवों की आवश्यकता है. जिस दिन अनुभवों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, मतलब वो पूरी डेवलप्ड हो चुकी है, सचेतन हो चुकी है, तब उसको रीबर्थ का कोई कारण नहीं है, तब वो मुक्त है. उसके बाद वो अगर आना चाहती है आती है, और आना चाहती है तो सचेतन रूप से कॉन्शियस वर्क के लिए आती है. और उसको जन्म से ये ज्ञात होता है कि मैं क्यों आ रही हूँ. कहीं ना कहीं उसको अर्ली लाइफ में 4-5-6 साल उम्र या उसके भी पहले उसको ज्ञात हो जाता है कि मेरा इस संसार में प्रयोजन क्या है. तो जिस दिन आदमी पूरा डेवलप हो जाती है साइकिक बीइंग, सारे अनुभवों से फिर आवश्यकता नहीं है। तो अब प्री प्लान्ड से डिपेंड करता है कि भाई बाहर की क्या घटना है, प्री प्लान्ड है एक हाईएस्ट लेवल पर एवरीथिंग। लेकिन श्री अरविंद माता जी ने दोनों ने कॉशन वर्ड यूज किया है इसके साथ, क्योंकि फिर व्यक्ति, कई लोग ये कहते हैं फिर कोई कुछ करेगा नहीं, ये भी सत्य नहीं है। आपको कितना भी कोई कह दे सब प्री प्लान्ड है फिर भी करेंगे, क्योंकि सब ही नचावत राम गुसाई तो अल्टीमेटली करेंगे वही चेष्टाएं करेंगे जो उनको ले जाएंगी।
अलोक भैया एक प्रश्न और पूछ लूं?
हाँ हाँ अवश्य अवश्य।
श्री राम का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ, श्री राम का दिन में 12 बजे हुआ, कोई आपकी विशेष व्याख्या है इसमें? जन्म के समय की बात
है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो फिजिकली ऐसे हुआ कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही सांकेतिक रूप से बड़ी स्पष्ट है। श्री राम त्रेता युग में आते हैं, वहां राजा ही प्रधान है। त्रेता युग के पहले सतयुग है, सतयुग में हर व्यक्ति अपने इनर ट्रूथ से चलता है, लेकिन मतलब भगवान यज्ञ रूप में, यज्ञ पुरुष के रूप में हर एक के हृदय में अवेकेंड है। त्रेता युग में वो राजा के रूप में है, और द्वापर युग में वो कोड ऑफ कंडक्ट, और कलयुग में सब खत्म। तो श्री राम त्रेता युग में आते हैं, जब एक तरह से देखा जाए तो अभी भी जो सतयुग है उसका जो फुल इफेक्ट है वो है वहां पे। रावण वगैरह आ गए हैं, लेकिन वो एक एक फुलनेस है लाइफ की कुछ हद तक। श्री कृष्ण कब आते हैं? द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग आने वाला है। तो वो आधी रात में आना कि वो जब बिल्कुल, और उन्होंने इसीलिए कहा कि यदा यदा ही धर्म सिग्लानी, तो वो एक एब्जेक्ट डार्कनेस में जब कहीं पर नहीं दिख रहा है कोई रास्ता, पूरा भटक गया है व्यक्ति। श्री राम के साथ ऐसा नहीं है, वो ऐसे काल में नहीं आ रहे जब व्यक्ति भटक गया। अभी तो वानर और राक्षस वो अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, असुर, तो वो एक अलग है। सूर्य आके उनको पथ दिखा रहा है, वैसे भी उनको एक, इसके पीछे एक दूसरा संकेत भी है कि भाई सूर्यवंशी हैं, और जो श्री कृष्ण है ये सारे यदुवंशी हैं। तो उस सेंस में भी है, लेकिन जो मूल है वो सिंबॉलिक है कि श्री कृष्ण आते हैं द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, और वो एक ऐसा समय जब घनघोर अंधकार है, वहां श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो हाथ में मनुष्य के रक्त देते हैं गीता आगे का मार्गदर्शन करने के लिए। अब जैसे श्री अरविंद का जन्म, बाई दिवे श्री अरविंद का जन्म सुबह 4 बजे हुआ है, 4 के आसपास, तो भी बड़ा सिंबॉलिक है कि वो उषा काल। अब पूरी तरह वो उषा नहीं हुई है, फिजिकली यू कैनॉट सी द डे, लेकिन वो एक्चुअल बर्थ उनकी यही दिखा रही है कि वो अब एक नव जन्म की ओर संसार जा रहा है। अब उसके लिए उन्होंने सबके हाथ में सावित्री रख दी है, जैसे श्री कृष्ण गीता रखी है, क्या ये नेविगेट करेगी? तो हाँ सॉरी
भैया, इसकी एक व्याख्या पंडित जी ने मुझसे कहा कि क्योंकि ये दो काल मिल रहे थे, और जब शून्य पे काल आया तो वो काल पुरुष थे, प्रकट तो समय ही उनको होना था।
हाँ, ये काल पुरुष की वो बात है, वो तो दो काल तो दोनों बार मिल रहे हैं। श्री कृष्ण की जब विड्रॉ करते हैं तब भी दूसरा काल, वो तो युग संधि की वेला होती है, दोनों समय होती है। तो लेकिन वो सूर्य, वो दोपहर क्यों और ये रात क्यों? बात ये है, वो तो काल तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि द्वापर और कलयुग का मिलन है, ये तो भागवत पुराण में एकदम स्पष्ट रूप से है। बाकी जो श्री राम काल का अंत है वो युग का, ये बड़ा स्पष्ट नहीं है, ये एक प्रकार की व्याख्या में है। परंतु अगर हम वाल्मीकि की रामायण पढ़ें तो ये वहां पर ये नहीं है कि वो जो दिखाया गया था रामायण में भी कि वो स्वयं वो आकर के यम कहते हैं कि भाई काल बदल रहा है, क्योंकि कायदे से वो डेफिनेट नहीं है। हालांकि हम मान के चलते हैं कि ठीक है काल बदल गया उसके बाद, परंतु श्री कृष्ण के समय भी बदलता है। श्री कृष्ण के समय वो कलयुग आ रहा है जो महारात्रि है।
और कोई साधक कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अब एक प्रश्न और ले सकते हैं।
जय श्री मां भैया।
जय मां जय।
आपने लास्ट लाइन वो सरल ने पढ़ा था, अभी सीखा था 27वां पेज का लास्ट पैराग्राफ था, उसमें लास्ट लाइन है कि आत्मा में उसका जन्म ही नहीं हुआ, ये पूरा पैराग्राफ।
हाँ, तो आत्मा में जन्म ही नहीं हुआ, यानी कि जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के घेरे में रहता है, मन के घेरे में रहता है, जिसके लिए मन ही सब कुछ है, और इंद्रियों से जो चीजों को देखता है, सूंघता है, श्रवण करता है, उसको ही वो सच मान के चल रहा है। तो वो व्यक्ति अभी उसका जो आत्म तत्व है उसमें जन्म हुआ ही नहीं है, ये उस सेंस में है कि वही वो नव जन्म की यहां बात हो रही है, न्यू बर्थ, यानी वो स्पिरिचुअली बॉर्न नहीं है, रीबॉर्न नहीं है, वो उसी को सच मान रहा है, मन को ही घेरा उसी में, जो मन दिखा रहा है, खेल खेल रहा है, उसी को वो सच मान रहा है। ठीक है, अब हम लोग प्रणाम करके चले
जी, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आपका फादर हम करते हैं, कितना सुंदर व्याख्या, इतना सुंदर विचार।